ॐ नमः शुद्धिभ्यः नमो अर्हन्ताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो वज्रायाण नमो ईसो पंच सब पाव प्रणासन मंगलान चे पढ़म हवई मंगल चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साम मंगलम केवलिपन्नतो मंगलम चत्तारि लोकतम अरहंत लोकतम सिद्ध लोग उत्तम साहु लोग उत्तम केवल पंडितोत्तम चत्तारि शरणं पव्यजामि अरहंत शरणं पव्यजामि सिद्ध शरणं पव्यजामि साहु शरणं पव्यजामि केवल पंडितो शरणं पव्यजामि क्षणभंगुर जीवन की कली काकल प्रातः काल खिल खिल मलयाचल की शुचि शीतल वायु सुगंध समेत मिली न कल काल उठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली भजले अरिहंत अरि रसना फिर उनके समय में ही नमो अरहंताण में इस समय एक ऐसा प्रश्न उपस्थित है कि भगवान की जो स्थापना है वह स्थापना जैसे खंदारगिरी चंदेरी में बाहुबली स्वामी की प्रतिमा के ऊपर छिपकलियां हैं, बिच्छू हैं, लताएं हैं, गोमटेश्वर बाहुबली स्वामी की प्रतिमा पर भी लताएं वेष्टित हैं, लया समक्कंत महाशरीरम लताओं से समक्कंत समाक्रांत है महाशरीर जिनका, और पार्श्व जिनेन्द्र की प्रतिमाओं में तो लगभग 100 में से 99 प्रतिमाओं में फणा दृष्टिगोचर होते हैं। तो ये फणा भगवान की स्थापना में कहां तक उचित, तो इस पर अपनी चर्चा थी। तिलोय पंडिती ग्रंथ में एक गाथा आती है जिसमें लिखा है कि हुंडाव सर्पणी काल के प्रभाव से, काल चक्र चलता रहता है, चलता रहता है, घूमता रहता है। इतर संप्रदायों में भी काल का पहिया घूमे रे भैया, ऐसे भजन आपको मिलेंगे सुनने। अच्छा, वैराग्यप्रद भजन है, काल का पहिया घूमे रे भैया, मन्नाड़ी की आवाज में। अब ये जो जैन शास्त्रों में काल चक्र बताया, ये भरत और ऐरावत क्षेत्र से संबद्ध है। ये षट कालों के माध्यम से एक अवसर्पिणी और एक उत्सर्पिणी, दोनों में छह छह खंड होते हैं और उन छह खंडों में अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुष होते हैं, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि, और उत्सर्पिणी के तृतीय काल में होते हैं। काल चक्र का एक सुंदर चित्र था। अब यहां अब ये पूरा जो काल चक्र है इसको एक एक कल्प काल में उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, पहले उत्सर्पिणी होती है अंत बाद में अवसर्पिणी होती है। उत्सर्पिणी के प्रारंभ में सुवृष्टियां होती है और अवसर्पिणी के अंत में कुवृष्टियां होती है, और इन सभी वृष्टियों में जो समयावधि है, कालावधि है, वह 49 दिनों की है। सात सात वृष्टियां होती है, शुभ और अशुभ दोनों, और ये वृष्टि आप समझ लीजिए कि आषाढ़ पूर्णिमा को अवसर्पिणी संबंधी वृष्टियां समाप्त हो जाती है, वो अंतिम दिन होता है पूर्णिमा का, और उसके बाद फिर 49 दिनों तक शुभ वृष्टियां। अति दुष्क्रमा काल होते हैं दोनों, अवसर्पिणी का अंतिम और फिर उत्सर्पिणी का प्रथम काल। तो ये काल चक्र है, इस काल चक्र में असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी कालों के व्यतीत हो जाने पर एक ऐसा अवसर्पिणी काल आता है जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जो बड़ा उबड़ खाबड़ होता है। उसमें जो सामान्य अवसर्पिणी का क्रम होता है उससे भिन्न घटनाक्रम चलते हैं। चक्रवर्ती का मान भंग, फिर इसी अवसर्पिणी के चतुर्थ काल में 63 शलाका पुरुषों के स्थान पर मात्र 58 शलाका पुरुषों का होना, और 58 इस अपेक्षा कि प्रथम तीर्थंकर का तृतीय काल में ही जन्म लेकर मोक्ष चले जाना, फिर प्रथम नारायण ही कालांतर में प्रथम नारायण का ही अंतिम तीर्थंकर के रूप में अवतरित होना, तो दो भिन्न पद हैं, नारायण और तीर्थंकर दोनों भिन्न पद हैं। लेकिन एक ही जीव इन दोनों पदों में विराजित हो रहा है, प्रथम नारायण अंतिम तीर्थंकर। तो इस तरह 63 में से दो कम हो गई है, आदिनाथ भगवान और महावीर स्वामी के जीव, और तीन चक्रवर्तियों का पद तीर्थंकरों को प्राप्त हो जाता। आप सब जानते हैं पांचवें छठे और सातवें चक्रवर्ती 16वें 17वें और 18वें तीर्थंकर। तो इस तरह कुल पांच की संख्या घट गई और 63 के स्थान पर 58 शलाका पुरुष हुए। ये हुंडाव सर्पणी काल का प्रभाव। इसी तरह हुंडाव सर्पणी काल में 363 मतों की उत्पत्ति होती है, मान्यताओं की, संप्रदायों की उत्पत्ति होती है। इसी तरह अन्य भी कुछ उसमें विशेषताएं बतलाई और उन विशेषताओं में एक गाथा में जो हमने आपको कही थी बात, तीन तीर्थंकरों के ऊपर उपसर्ग भी इसी काल में होते हैं। हुंडाव सर्पणी, हुंड का अर्थ होता है अटपटा, हुंडाव सर्पणी यानी अटपटी अवसर्पणी, जिसमें ऐसी ऐसी विचित्र घटनाएं हो रही है जो कभी होती नहीं सामान्यतः। तो तीन तीर्थंकरों पर उपसर्ग होना भी इस काल का प्रभाव है। अब उन तीन तीर्थंकरों की अपन ने प्रतिमाएं तो देखी, सुपार्श्वनाथ भगवान में पांच फणा है, फिर पार्श्वनाथ भगवान में 7-9 ऐसे संख्याओं से लेकर के 1008 तक के फणा अपन देखते हैं, और महावीर स्वामी वाली जो प्रतिमा कल अपन ने देखी थी उसमें फणा कितने थे वो गिनना रह गया था। अभी है क्या? जो भी है, तो ये फणा जो है वो तीर्थंकर उपसर्ग विजेता थे इस बात का सूचक है, एक बात है ना। और भगवान पार्श्वनाथ स्वामी पर जो फणा है, धरणेन्द्र फणा मंडल मंडिता आयु, वहां अपन देखते हैं कि वो फणा नाग कुमार देवों के जो इंद्र थे उनके द्वारा अपनी विक्रिया शक्ति से बनाया वो फण। महावीर स्वामी वाले जिन बिंब में 7 फण है अमरावती में, ठीक है तो 7 होंगे। तो ये उपसर्ग काल के फणा है, इस बात का एक संकेत है पार्श्वनाथ भगवान के विषय में जो अनेक ग्रंथों में उपलब्ध होता है। पर अभी जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो एक ऐसी बात है जिससे बहुत से लोग अनजान हैं। ठीक है, उपसर्ग जब चल रहा था तब तो मुनि अवस्था थी, तब केवली अवस्था नहीं थी, अरहंत अवस्था नहीं थी। अरहंत अवस्था प्राप्त होने से पूर्व ये उपसर्ग हुआ था, क्योंकि अपन ने पढ़ा था ना केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में कि केवल ज्ञान हो जाने पर उपसर्ग नहीं हो सकता। कोई भी केवली भगवान, सातों केवलियों में से कोई भी केवली भगवान, मुख्य तो उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली है, इन दो पर ही उपसर्ग होता है, तो उपसर्ग नहीं होगा। पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकर केवली भी थे, समुद्घात केवली भी थे और उपसर्ग केवली भी थे। तो उपसर्ग सबके ऊपर नहीं होता, पर होता है मुनि अवस्था में, केवल ज्ञान के पश्चात नहीं होता। ये बात ध्यान में रखने की। तो फिर जिस प्रतिमा में केवल ज्ञान कल्याणक की प्रतिष्ठा है, उस पर ये फणा रखना कहां तक उचित है, ये प्रश्न मूल में चल रहा है और बहुत समय से चल रहा है। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग उसके बारे में कुछ अपने विचार भी व्यक्त करते हैं, पर एक ये जानकारी जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कुछ हट करके थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि हमें ये जानकारी जो शास्त्रों में मिल रही है वो हमने पहले किसी अन्य के मुख से नहीं सुनी है। एक बात अवश्य हमने आपके सामने रखी थी कि भगवान को छूना उपसर्ग की श्रेणी में नहीं आता, और महापुराण में जिनसेन आचार्य महाराज ने भगवान के चरणों पर देवों के इंद्र अपना मुकुट रगड़ते हैं, ये कथन अपन ने पढ़ा था। और रगड़ना तभी संभव है, उनके चरण उनके मुकुटों से घर्षित थे, ऐसा लिखा है, घृष्ट शब्द का प्रयोग था। तो वो एक अलंकारिक भाषा है, घृष्टते का मतलब ऐसा नहीं कि भगवान के पैर छिल गए उनके मुकुटों से रगड़ नहीं, घर्षित थे मतलब उस मुकुटों का स्पर्श था, ये स्पष्ट है। अब उपसर्ग का तो अभाव है लेकिन स्पर्श का अभाव नहीं है, ये बात महापुराण से प्रमाणित होती है, और जो ग्रंथकार है आचार्य जिनसेन स्वामी, ये उनके वचन है। और जिनसेन आचार्य महाराज ने 40,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की अवशिष्ट रचना पूर्ण की थी, 20,000 श्लोक प्रमाण रचना उनके गुरु वीरसेन आचार्य संपन्न कर चुके थे, फिर उनकी संलेखना का काल आ गया, तो फिर शिष्य ने उस अपूर्ण कार्य को पूर्ण किया। उस काल में ऐसे कार्य अधूरे छोड़कर गुरु चले जाते थे जिसको शिष्य पूर्ण करते थे, और कार्य जिन शासन की सेवा का ही कार्य होता था, और बल्कि ये कहो कि सरस्वती की आराधना का कार्य होता था। सरस्वती के भक्त लक्ष्मी के लिए नहीं रोते, तो वो जिनसेन आचार्य जिन्होंने लिखा है कि भगवान के चरणों को इंद्रों के मुकुट स्पर्श करते हैं और उनके चरण उन मुकुटों से घृष्ट होते हैं, यानी घर्षण होता है एक अपेक्षा से सरल शब्दों में, और घर्षण स्पर्श से बिना स्पर्श से रहित नहीं हो सकता, ये बात थी। अब जो बात आ रही है वो देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा। पार्श्वाभ्युदय नाम का एक ग्रंथ उन्हीं जिनसेन आचार्य द्वारा लिखित है, जय धवला के रचनाकार है, मेघदूत नामक एक महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास जी ने की थी। आज संस्कृत जगत में साहित्य के अंतर्गत मेघदूत का नाम प्रसिद्ध है। तो समस्या पूर्ति नामक एक प्रक्रिया होती है साहित्य में। समस्या पूर्ति का अर्थ होता है कि अन्य कवि के काव्य की एक पंक्ति ली, क्योंकि एक एक काव्य में चार पंक्तियां होती हैं, तो चार पंक्तियों को अगर ले लेंगे तो चोर कहलाएंगे, लेकिन नहीं, ये समस्या पूर्ति नामक एक प्रशंसनीय प्रक्रिया मानी गई है कि आप केवल एक पंक्ति लीजिए उसमें से और बाकी तीन पंक्तियों की रचना स्वयं करिए, और वो रचना ऐसी हो जो उस काव्य की गरिमा के समकक्ष हो, प्रशंसनीय हो। अब ऐसा ही हुआ, जिनसेन आचार्य महाराज ने मेघदूत काव्य को लिया और मेघदूत काव्य पर उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का वर्णन किया। चार सर्गों में, पूरे ग्रंथ में उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान पर हुए भयंकर उपसर्ग का वर्णन किया। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक आचार्य एक समूचा ग्रंथ जिसका मात्र चतुर्थांश चौथा हिस्सा वहां से ली हुई पंक्ति का है, शेष तीन भाग इन्होंने समस्या पूर्ति करके रचे हैं। क्या ज्ञान होगा उनका, केवल उपसर्ग का वर्णन करने में पूरे एक ग्रंथ की रचना कर दे, कोई साधारण ज्ञानी हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। उन आचार्य महाराज ने चार सर्ग उस संपूर्ण ग्रंथ के, उसका नाम है पार्श्वाभ्युदय, पार्श्व और अभ्युदय, इसकी संधि कर दे, पार्श्वाभ्युदय, अ मिलाने से आ हो जाता है, पार्श्व का पार्श्वा हो गया और अभ्युदय के अ का इसमें समावेश हो गया, तो भ्युदय, पार्श्वाभ्युदय ये उसका नाम है। और इसके चतुर्थ सर्ग के 46वें काव्य में आचार्य कह रहे हैं वहां पर केवल ज्ञान उत्पन्न हो रहा है भगवान को, उसके पहले पूरा उपद्रव ही चल रहा है, भगवान पर उपसर्ग चल रहा है, 7 दिनों का भयंकर उपसर्ग चल रहा है। अब ये देखिए, ये शब्दाचार का पालन करने के लिए जो छंद जिस लय में पढ़ा जाता है, जिस प्रक्रिया से पढ़ा जाता है, उसी प्रक्रिया से पढ़ने के लिए हमने जोड़ा है। यस्मिन् काले समजनि मुनेः केवल ज्ञान संपद, यस्मिन् दैत्यो गिरिमुदहरन् मूर्ति चिक्षेपुरस्य तत्कालं सा शरदुदभव वक्तु कामेति वोचै शापांतो मे भुजग शयना दुखिते शांग पाणौ। अभिप्राय है कि केवल ज्ञान भगवान को हो चुका, उपसर्ग का अंत हुआ, केवल ज्ञान हुआ, और इसके उपरांत देखिए क्या होता है। वो जो कमट का जीव है वो भयभीत हो जाता है और वो वहां से भागने का प्रयत्न करता है, लेकिन उसको धर्णेन्द्र रोकते हैं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इस अज्ञानी ने पूर्व वैरवश आपके ऊपर जो उपद्रव किया है उसको आप क्षमा कीजिए। ये एक निवेदन है, भक्ति में निवेदन कर रहे हो उसको समझाने के लिए, उसका भय दूर करने के लिए ऐसा उपक्रम धर्णेन्द्र कर रहे हैं। धर्णेन्द्र जानते हैं कि भगवान ने क्षमा किया तभी तो वो केवल ज्ञान को प्राप्त हुए, लेकिन उसका भय दूर करने के लिए वो ऐसा कहते हैं। क्या सुंदर शब्द में वो निवेदन कर रहे हैं, हे मुनि मैं पुनः याचना करता हूं, आप देवताओं द्वारा स्तुति को प्राप्त हुए हैं, प्रसन्न हुई है, और इस समय जो हाथ जोड़कर आपकी भक्ति करना चाहता है उस दैत्य शंबरासुर पर दया करके मधुर दृष्टि डालिए। पश्चाताप से किए गए चित्त के उद्वेगों, अपने किए हुए अपराधों की स्मृति से उत्पन्न मानसिक संतापों से प्रातःकालीन कुंद के फूल के समान शिथिल और शरीर से गिरने के इच्छुक उपसर्ग करने वाले उस कमट के जीव को ऐसा लगा कि मैंने जिन पर उपसर्ग किया वो तीन लोक के नाथ हैं। काश मेरे जैसे दुष्ट की मृत्यु हो जाए, इतना पश्चाताप हुआ उसको। मृत्यु को चाहने वाले इस अपराधी को आप जीवन दान प्रदान करो, इसको बचा लो, इसके भय का निवारण करो, ये प्रार्थना की। और इसके उपरांत देखिए बड़ी सुंदर बात है, एक काम करना होगा हमें दूसरी प्रति देखनी होगी, कभी कभी पीडीएफ में कुछ डिफेक्ट आ जाता है तो फिर मुश्किल पड़ती है, वो अक्षर थोड़े अस्पष्ट आ रहे हैं। अभी निकलेगा, मिल गया स्तुत्यन्ति सौ व्यरच दिवत व्यरच यदिवत छत्र मुच्चै प्रणालिम स्तुत्यन्ति सौ व्यरच यदिवत छत्र मुच्चै प्रणालिम भर्तुर्भक्त्या दधदधि शिरः स्वाम्विदत्य प्रमुदा व्याक्तैर्वक्त्रै ध्रुवमिति मुनिं वक्तु कामस्तदानी कच्चित् सौम्यं व्यवसितमिदं बन्धुकृत्यं त्वया मे। अब स्तुति की उसने पार्श्वनाथ भगवान की, धरणेन्द्र ने प्रार्थना की और उसके भय को दूर किया, वो नतमस्तक हो गया चरणों में। जिसने 7 दिनों तक उपद्रव किया था वो अंततः भगवान के चरणों में झुक गया। जिसके पास क्षमा होती है अंततः शत्रु को उसके प्रति नतमस्तक होना पड़ता है, बहुत बड़ी बात थी। अब देखिए क्या सुंदर बात लिखी है आचार्य जिनसेन स्वामी ने, कि जब उसने स्तुति पूर्ण की और अपनी प्रार्थना कर ली उसके लिए, उपसर्गकर्ता के लिए, तब धरणेन्द्र ने वापस भगवान के सिर के ऊपर फणा मंडप को एक छत्र के समान बना लिया। अब भगवान केवल ज्ञानी है, देखिएगा अपन पहले ही पढ़ चुके हैं 46वें काव्य में भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हो चुका है और ये जो काव्य चल रहा है ये 58 क्रमांक का काव्य है। 46 से 58 क्रमांक का कार्य है। 12 काव्य पश्चात आचार्य जिनसेन स्वामी क्या कह रहे हैं कि धरणेन्द्र ने फिर से फणा फैलाया और फणा फैला करके उसने जो सर्प के मुख थे वो ऐसे खोल दिए। उपसर्ग के काल में जो फणा था उसमें बंद मुंह वाले सांप थे और केवल ज्ञान के पश्चात जो फणा बना उसमें खुले मुख वाले सर्प हैं। विवृत ही वक्त्रय ही व्याक्त ही विवृत ही वक्त्रय ही मुखे ही तदानी काले मुनिम भगवंतम पार्श्व जिनेन्द्रम वक्तु कामन। पार्श्वनाथ भगवान की महिमा को वो और वो मन नहीं भर रहा था, स्तुति समाप्त हो रही थी लेकिन फिर भी लग रहा था कि और मैं कुछ भगवान का गुणगान करूं। तो उसने प्रसन्न होकर के धरणेन्द्र ने भगवान के ऊपर फणा मंडल बना दिया और फिर उसने मुंह खोल लिए स्तुति करने के लिए। स्तुति तो कर ही रहा था, फिर वहां पर उसने फणा फैलाकर जो मुख थे उसको और खोल लिए तो उतने मुखों से और भगवान की स्तुति हो गई। तो इससे ये बात समझ में आती है कि जो अपनी एक धारणा थी कि ये फणा जो था वो केवल ज्ञान के पहले था, केवल ज्ञान के पश्चात नहीं था, उस धारणा का यहां पर निवारण हो जाता है। अब क्या निर्णय होता है अपना? अब अपन ये समझ रहे हैं शास्त्र के कथन से कि केवल ज्ञान से पहले वाला फणा अलग था और केवल ज्ञान के उपरांत जो फणा हुआ, फणा बना, वो अलग था। और उन दोनों में अंतर क्या था ये भी अपन ने पढ़ा। केवल ज्ञान के पहले जो फणा था उसमें मुख बंद थे सर्पों के और यहां पर केवल ज्ञान के उपरांत जो फणा बना है उसमें मुख खुले हुए हैं। खुले हुए क्यों हैं? क्योंकि धरणेन्द्र उन मुखों से, उस विक्रिया से भगवान की स्तुति में तत्पर है। तो आप देखिएगा, अब आपका ध्यान जाएगा भगवान के फणाक की तरफ और आपको लगेगा कि हाँ ये फणा जो है उपसर्ग का प्रतीक है और ये फणा केवल ज्ञान के बाद धरणेन्द्र भगवान की स्तुति कर रहा है उसका प्रतीक है। दोनों में अंतर पहचान में आ जाएगा। ये बड़ी विशेष जानकारी हमें अभी कुछ वर्षों पहले प्राप्त हुई तो हम भी बड़े अचंभित हुए कि अच्छा ऐसी बात है। पर देखिए बहुत सारी जानकारियां शास्त्रों में भरी हुई है जो अभी अपने पास नहीं है, तो ऐसा लगता है कि अपन और छोटे बन जाएं और जिनवाणी माँ अपने को और बिल्कुल बच्चा समझ के और शिक्षा देती जाए और अपने को ज्ञान से संपन्न बना दे, अपने को केवली बना दे जिनवाणी माता। आचार्य अमित गति महाराज ने तो यही प्रार्थना की। वो संस्कृत में कौन सी पंक्ति है जिसमें ये प्रार्थना है? सरस्वती केवल बोध लब्धि विदधातु, ये पंक्ति है। क्या अर्थ है इसका? इसमें ये अर्थ निकलता है कि अभी स्वाध्याय में या फिर कोई भी मैं जब आगम के वचन बोलता हूं या स्तुति करता हूं या कुछ भी करता हूं, प्रतिक्रमण करते समय भी कुछ त्रुटियां हो जाती है, कायोत्सर्ग में भी हो जाती है। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने तो प्रत्येक अंचलिका में कायोत्सर्ग संबंधी त्रुटियां स्वीकार की है कि मेरे से जो त्रुटि हुई है, इच्छा में बनते सिद्ध भक्ति काउ सगो को तत्सालोचियो, ये पहली लाइन वो यही लिखते हैं। हर अंचलिका में आप शुरुआत देखिएगा इच्छा में बनते ये आपको शब्द मिलेंगे। बनते का अर्थ होता है भगवान संबोधन में, हे भगवान सिद्ध भक्ति काउ सगो कहो, मैंने सिद्ध भक्ति का कायोत्सर्ग किया था, तस्य आलोचयम् इच्छामि, उसकी आलोचना करना चाहता हूं क्योंकि पंचम काल है, संगणनहीन है और वो चौथे काल के मुनिराजो जैसा कायोत्सर्ग आज नहीं हो पा रहा है। तो कायोत्सर्ग में जो 32 दोष लगते हैं उनमें मुझे कोई भी दोष लगे हो तो मैं आलोचयम् इच्छामि, मैं अपने दोषों की आलोचना करना चाहता हूं हे भगवान। ये वाक्य है। फिर उसके बाद वो स्तुति करते हैं सिद्ध भगवान की, सम्राण समन समचरितुत्ताण अटवे कम विपमुखाण अटगुण संपन्नाण, इस तरह से स्तुति करते हैं। बहुत सारी बातें अपन नहीं जानते। आज जैसे ये जो बात हमने आपके सामने रखी है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जानकारी हो, कुछ लोगों को ना हो। हम तो अपने बारे में बता सकते हैं कि जब तक हमने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा था तब तक हमें जानकारी नहीं थी कि केवल ज्ञान के बाद भी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर फणा की रचना हुई थी। और फिर ये भी ऐसे आचार्य हैं जिनसेन आचार्य मूल संघ के प्रधान आचार्य, जय धवला के रचनाकार आचार्य, इनके वचनों पर अपन कोई दूसरी कल्पना कर ही नहीं सकते इनके वचनों को लेकर के। पूर्णतः श्रद्धेय है, पूर्णतः मान्य है। तो ये सारी बातें हैं जानकारी की। तो फणा वाली प्रतिमा केवली अवस्था में भी अबाधित है। उपसर्ग के प्रतीक फणा वाली प्रतिमा है तो सुपार्श्वनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महावीर भगवान तीनों की अपन देख चुके हैं, तीनों की प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। सुपार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा कौन सा पर्वत है? वो गोपाचल ग्वालियर में, वहां पर देखें तो फिर वो बड़ी प्रतिमा जो सुपार्श्वनाथ भगवान की, जिसको पार्श्वनाथ भगवान की बोलते हैं सब लोग, जैसे कुंडलपुर के जो बड़े बाबा थे उनको सब लोग पहले महावीर भगवान बोलते थे, फिर बाद में पता चला कि इतने बड़े बड़े जो बाल हैं ये तो आदिनाथ भगवान के थे, और फिर नीचे गोमुख यक्ष चक्रेश्वरी यक्षी, ये तो स्पष्टतः आदिनाथ भगवान के ही यक्ष यक्षी हैं, तेलोय पंडित्य में इनका उल्लेख है। तो इससे फिर अंत में ये परिचय हो गया सब विद्वानों को और सब साधुओं को कि ये महावीर भगवान नहीं है। लोग भक्ति में बोलते हैं कोई बात नहीं, वो तो आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान में महावीर भगवान भी है, इसलिए अगर अपन महावीर भगवान बोलो तो उनके केवल ध्यान वाले महावीर भगवान की भक्ति भी कर सकते हो, लेकिन भगवान तो आदिनाथ भगवान थे। इसी तरह जब ये अपने को जानकारी मिल रही है तो जानकारी के बाद अपन अपनी धारणा में संशोधन कर सकते हैं, उसमें क्या आपत्ति है। जैसे लवकुश को जब तक पता नहीं था कि ये हमारी मां महासती महारानी सीता है, तब तक वो उनको जो मानते थे सो मानते थे, लेकिन जब पता चला तब उन्होंने अपनी धारणा बदली या नहीं, बदल ली। उनने ये भी स्वीकार कर लिया कि श्री राम हमारे ही पिताश्री है। तो ज्ञान होने पर धारणाओं में परिष्करण होता है। अज्ञानी मिथ्या धारणाओं पर भी दृढ़ रहते हैं, ज्ञानी जन समीचीन बोध प्राप्त होने पर पूर्व धारणाओं का विसर्जन करने में विलंब नहीं करते। गुमटसार जीव कांड की 27वीं गाथा में आचार्य निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि गुरु के निमित्त से किसी को कोई गलत धारणा बन गई, उसने या तो असावधानी से सुन लिया या फिर अर्थ लगाने में कोई त्रुटि कर लिया, कुछ भी हो गया, या गुरु के मुख से कोई शब्द स्खलित हो गया, अब उसकी गलत धारणा बन गई शिष्य की, वो सम्यक दृष्टि है क्योंकि वो गुरु की वाणी को भगवान की वाणी मान रहा है। लेकिन कालांतर में जब जिनवाणी उसके सामने रख करके कोई आचार्य उपाध्याय अथवा कोई भी उसको समझाते हैं कि तुम्हारी धारणा में कहीं स्खलित पना नजर आ रहा है, तुम कहीं चूक रहे हो, वो सम्यक दृष्टि जीव उन गुरुओं से पूछते हैं कि गुरुवर मैंने तो जो गुरु ने मुझे ज्ञान दिया उसी को स्वीकार किया हुआ है, मुझसे कहां चूक हो रही है, क्या आप मुझे बता सकते हो। तो फिर सुप्तादोत्तम सम्मम दर्शी जनता, वो गुरुजन उसको सूत्रों से आगम से समझाते हैं कि देखो यहां पर ऐसी त्रुटि हो रही है। तब वो सम्यक दृष्टि जीव जब आगम को देख लेता है तो आगम अंतिम प्रमाण है, क्योंकि वो सर्वज्ञ देव के वचन है। जैसे ही आगम मिल जाता है उसको तो फिर वो अपनी पूर्व धारणा को अपनी चूक मानकर सुधार लेता है, और जो नई जानकारी उसको मिलती है उसको हृदयंगम कर लेता है, आस्था पूर्वक हृदय में स्थान दे देता है, और उसका सम्यक तो सुरक्षित रहता है। और आचार्य कहते हैं सुत्तादो तम सम्मम दरिशित जनतम जदा न सत्य यदि। अब कोई ऐसा भी शिष्य हो सकता है जो उस पर श्रद्धा न करे और वो आग्रह पकड़ ले कि नहीं मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते, शास्त्र तो कोई पुराने आचार्य का लिखा हुआ है, वो त्रुटि कर सकते हैं, मेरे गुरु गलत नहीं हो सकते। तो ये गुरु का जो पक्षपात है उसके विषय में आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती लिखते हैं सोचेव हवई मिच्छा इट्ठी तदोपगति जीवो तदोपगति। वह उसी समय आगम को अस्वीकार करते ही साथ तत्क्षण मिथ्या दृष्टि बन जाता है। अभी तक समय दृष्टि था, गलत मान रहा था तब तक, लेकिन अब गलत को सही मानने लगा। वो पहले गलत को सही और गलत का भेद किए बिना भगवान की वाणी मान करके चल रहा था, तब तक सम्यक दृष्टि था। अब आगम दिखाने के बाद भी आगम को अस्वीकार करके गुरु का पक्षपात पकड़कर गलत को सही मानता है, उसी क्षण मिथ्या दृष्टि हो जाता है। ये कथन साधारण कथन नहीं है, ये सबको जगाने वाले वचन है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जिन शासन व्यक्तिवादी नहीं है और जो व्यक्तिवादी बनाना चाहते हैं वो खतरे में है। इससे स्पष्ट होता है कसाय पाउड़ की 107वीं गाथा भी यही कथन है। उसकी टीका में वीर सेन आचार्य महाराज, जिनसेन आचार्य महाराज ने जय धवला की 12वीं पुस्तक में इसका खुलासा किया। ये गुरु का शासन नहीं है, ये जिनेंद्र का शासन है। इसलिए ज्ञान के जगत में पक्षपात को स्थान मत दो, निष्पक्ष रहो। उदाहरण के लिए जो लोग हमें गुरु मानते हैं, हम अपना ही उदाहरण देते हैं, हम अपने आप को किसी का गुरु नहीं मानते, पर जो हमें अपना गुरु मानते हैं वो यदि हमारे उच्चारण को, हमारे शब्दों को, हमारे वचनों को सुनकर हमारी त्रुटियों को सही स्वीकार कर ले तो कहां तक उचित होगा। हम अपनी एक त्रुटि बताते हैं कि जब हम एक प्रवाह में बोलना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे उच्चारण में चाहिए जो शब्द है हिंदी भाषा का, वो हम चाहिए बोल जाते हैं। ये बचपन से हमारी एक आदत रही है, एक त्रुटि रही है। हम जब भी सावधानी से बोलेंगे तो चाहिए बोलेंगे, पर असावधानी से बोलेंगे ना तो वो संस्कारवश वो अशुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। अब अगर कोई हमारा भक्त या कोई शिष्य अपने आप को हमारा शिष्य मानने वाला या विद्यार्थी मानने वाला किसी से लड़ने लग जाए कि नहीं चाहिए नहीं है, वो सब किताबों में गलत छपा है, क्योंकि हमारे गुरु ध्यान सागर महाराज चाहिए बोलते हैं, तो फिर क्या यह निर्णय सम्यक होगा या मिथ्या होगा। तो गुरु भी छद्मस्त होते हैं, केवली नहीं होते, सर्वज्ञ नहीं होते, श्रुत केवली भी नहीं है, तो चूक सबसे संभव है। और अपन ये मान सकते हैं कि चूक मेरे से हो रही है, समझने में मेरी भूल हो रही है, तो अपनी भूल को सुधारना ही उत्थान का मार्ग है। जो बदलना नहीं चाहते वो कभी कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि अरहंत भी बदले तब सिद्ध हुए। अगर वो अरहंत पर्याय में ही रह जाते तो क्या सिद्ध हो सकते थे? नहीं हो सकते थे। इसलिए बदलने का संकल्प ही मोक्ष मार्ग, अपने अशुद्ध पर्याय को बदलकर शुद्ध पर्याय में जाने का पुरुषार्थ करना ही मोक्ष मार्ग। तो आज ये चर्चा यहां तक पहुंची कि केवल ज्ञान के बाद भी पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर धरणेन्द्र ने फणा मंडप की रचना की थी और छत्र छाते जैसा फणा बना दिया, तो बड़ा फणा बना लिया था। जय नम जय सुशासन।